नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
तुम ना थे इस जीवन में, जीवन मेरा कैसा होता, निर्बिन नदिया बिन फूल बगिया, जीवन मेरा ऐसा होता तुम ना।
प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी आप सब इस बाइबल अध्ययन के लिए तैयार हैं। पिछले अध्ययन में हमने उत्पत्ति उसके 19 अध्याय के 5 पद तक देखा था और आज हम अपने अध्ययन को उन पदों के विश्लेषण के साथ आरंभ करेंगे। 5 पद में लिखा है कि सदोम के पुरुष लूत के पास आकर कहने लगे कि आज रात को जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं वे कहाँ हैं, उन्हें बाहर निकाल ले आ कि हम उनसे संभोग करें। मित्रों, यह एक घिनौना दृश्य है जो इस शहर की बदनामी या अप्रतिष्ठा को प्रकट करता है, और शहर सदोम है। इस पाप का नाम उसी समय से लौंडेबाजी हो गया है, अर्थात सदोमी। स्पष्ट रूप से वहां पर सदोम में कलीसिया बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस भीड़ के लिए एक कलीसिया बने और उनसे कहे कि वे सब ठीक हैं, इसके बावजूद कि वे इस प्रकार का घिनौना काम कर रहे हैं। क्या मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर का वचन इस विषय पर बहुत स्पष्ट है और आप उसे बदल नहीं सकते। सदोमी, जिसे हम लौंडीबाजी के नाम से जानते हैं, यह एक भयंकर पाप है। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि जब लूत सदोम नगर में गया तब उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यह किस प्रकार का शहर या नगर था। वह उस नगर में आया और उसने पाया कि काम विकृति वहां बहुत अधिक है, और उसी वातावरण में उसने अपने बच्चों का लालन पालन किया। जब उसने पहले सदोम की ओर अपने तंबू को खड़ा किया था, तब उसने वहां से सदोम की गलियों, सड़कों, ऊंची इमारतों और पार्क आदि को देखा था जो उसे आकर्षित कर रही थी, और उसने नगर के बाहर भी भीड़ व लोगों को देखा था, परंतु उसने यह नहीं देखा कि वास्तव में वो क्या है। इस नगर की पाप बहुत बढ़ गई, इसलिए परमेश्वर इस नगर का न्याय करने जा रहे थे, अर्थात परमेश्वर उस नगर को नष्ट करने जा रहे हैं। मित्रों, आइए हम यहाँ पर एक तीक्ष्ण लकीर खींचे। आज पाप के प्रति एक नया दृष्टिकोण है, एक क्षेत्र है जहाँ पर पाप वैसा भयंकर नहीं है जैसा कि हम सोच रहे थे। कलीसिया ने इसके साथ समझौता कर लिया है जब तक कि यह और घृणित या तुच्छ न हो गया। एक कलीसिया है जहां पर लोग पुरुषगामी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सदोम और अमोरा के साथ जो हुआ वो आज की पीढ़ी के लिए एक सबक है। परमेश्वर इस प्रकार की कलीसिया को स्वीकार नहीं करते हैं। आज लोगों के विचार में यही है कि परमेश्वर पर विश्वास करो और उसकी संतान बन जाओ, फिर पाप करते रहो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं यह असंभव है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह नगर सदोम एक उदाहरण है उस पाप और विनाश का। पौलुस प्रेरित प्रश्न पूछते हैं रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय और उसके 12 पद में, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह अधिक हो जाए? और उत्तर है, परमेश्वर मना करते हैं, या कदापि नहीं, यह कदापि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बात यह है कि आप एक मसीही होकर निरंतर पाप करते हैं तो यह एक बहुत बड़ी गलती है, विशेषकर उनके लिए जो इसे हल्के में लेते हैं, और जैसा कि मैं सोचता हूं कि इस विशेष घटना के अंतर्गत किया गया है। इसी कार्य को सदोम और अमोरा में किया जा रहा था और परमेश्वर ने इन शहरों को नष्ट कर दिया। आप ये न कहें कि उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर पुरातन या आदिम विचार का है, परंतु आज वो अच्छे विचार वाले हैं। कृपया आप इस बात पर वाद विवाद न करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने आखिरकार सब पापियों को स्वीकार कर लिया। उसने सच में ऐसा किया, और जब उसने उनके अपने कार्यों को समाप्त किया, उसने लोगों को बदल दिया, अर्थात परिवर्तित कर दिया। एक वेश्या जो उसके पास आई थी, बाद में वह उस प्रकार के काम में नहीं रही। जब वह यीशु मसीह के पास आए तो तो वह पूर्ण रीति से बदल गई। यह बात दूसरे पापियों के साथ भी हुई है। एक चुंगी लेने वाला उसके पास आया और उसने अपनी चुंगी लेने की कुर्सी छोड़ दी। जब वह प्रभु यीशु के पास आया तो उसने अपनी कुटिलता वहीं छोड़ दी। मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। बहुत से श्रोतागण लिखते हैं और कहते हैं कि हम एक नई दुनिया में जी रहे हैं, इसलिए हमें जगाने वालों की आवश्यकता है, अर्थात जागृत करने वालों की आवश्यकता है। मेरे प्रिय मित्रों, यह सच है कि हम एक नई दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन यह फिर भी सदोम और अमोरा की तरह होता जा रहा है। अब आप बताएं कि जिम्मेदार कौन है। हम यहाँ पर उत्पत्ति 19 अध्याय उसके 6 और 7 पद में पढ़ते हैं, परंतु लूत द्वार के बाहर उनके पास गया और अपने पीछे द्वार बंद करके कहने लगा, मेरे भाइयों कृपा कर ऐसा दुष्कर्म न करो। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सदोम के पुरुष द्वार के बाहर हैं और वे ये चाहते हैं कि जो अतिथि लूत के घर के अंदर में है उन्हें सौंप दिए जाएं। लूत उनसे कहने लगा, मेरे भाइयों कृपा करके ऐसा दुष्कर्म ना करो। इस रीति से लूत ने उन बातों को देखा और वह एक लंबे समय से सदोम में रह रहा था। यह उसके लिए कोई नई नैतिकता नहीं थी, सिर्फ एक पुराना पाप था। उत्पत्ति 19 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, देखो मेरी दो पुत्रियां हैं जो अभी कुंवारी है, मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और जैसा तुम चाहो उनके साथ व्यवहार करो, पर इन पुरुषों के साथ कुछ न करो, क्योंकि ये तो मेरे छत के नीचे आए हैं। मित्रों, उन दिनों में ऐसा भी था कि जब कोई अतिथि को अपने घर में आमंत्रित करता था और उसकी सेवा सत्कार करता था तो उसकी यह भी जिम्मेदारी हो जाती थी कि वह उनकी सुरक्षा करे। इसलिए लूत इतना बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार है ताकि अतिथियों की सुरक्षा कर सके। आगे हम उत्पत्ति 19 अध्याय के 19 पद में पढ़ते हैं, परंतु उन्होंने कहा, एक ओर हट जा, और आगे कहा, यह यहां प्रवासी होकर आया था और अब हम पर न्यायी की तरह अधिकार जताता है, अब हम उनसे अधिक तेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। और वे लूत पर टूट पड़े और दरवाजा तोड़ने को निकट आए। मित्रों, और उन्होंने फिर से कहा, यह यहां प्रवासी होकर आया था और अब न्यायी की तरह अधिकार जताता है। यहां पर हम देखते हैं कि लूत अपने राजनैतिक क्षेत्र को बढ़ा रहा है। इसके बाद हम उत्पत्ति 19 अध्याय उसके 10 और 11 पद में जब पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु उन पुरुषों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े जितने लोग घर के द्वार पर थे उन सबको अंधा कर दिया। इस प्रकार वे लोग दरवाजे को ढूंढते ढूंढते थक गए। मित्रों, यदि उन अतिथियों ने लूत को अंदर नहीं खींचा होता तो वे उसे और उन अतिथियों को बर्बाद कर देते, क्योंकि सदोम के लोगों का यही उद्देश्य था। आगे हम देखते हैं कि स्वर्गदूत लूत को चेतावनी देते हैं कि वह सदोम नगर को छोड़ दे और वह बचकर सोअर में आता है। आइए हम उत्पत्ति उसके 19 अध्याय के 12 से 14 पद तक को पढ़ें। तब उन पुरुषों ने लूत से कहा, यहां तेरा और कौन कौन है, तेरे पुत्र पुत्रियां दामाद और जो कोई भी तेरा इस नगर में हो उन सब को लेकर इस नगर से निकल जा, हम इस स्थान को नाश करने पर हैं, इसलिए कि इनकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बहुत अधिक हुई है, अतः यहोवा ने हमें इसका विनाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों को जिनसे उनकी बेटियों का विवाह होने वाला था कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करेगा, परंतु उसके दामादों ने समझा कि वह हमसे हंसी कर रहा है। मित्रों, आप ध्यान दें, लूत अब यहां पर एक बहुत बुरी परिस्थिति में था। उसने इस नगर में वर्षों बिताए थे, उसने यहां पर रहकर ऐसी बातों को बर्दाश्त करना सीखा था जिसे वह दुष्टता कहता था। उसने वहां पर अपने बच्चों को वहां के लोगों के साथ बढ़ते हुए देखा था, संभवतः उनकी शादी भी हुई, जो लोग वहां पर नैतिक रूप से थोड़े अच्छे थे, और स्वर्गदूत से संदेश पहुंचा कि उस नगर को छोड़कर चला जा। तब वह अपने होने वाले दामादों के पास गया और उनसे कहा, आओ हम इस नगर को छोड़कर दूर चले जाएं, परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाले हैं। उन्होंने यह सुनकर उसकी हंसी उड़ाई और उसका उपहास किया। मैं सोचता हूं कि वे यह जानते थे कि थोड़े दिन पहले लूत ने जमीन के लिए कुछ पैसे लगाए हैं। वह वहां उनके बीच में सालों साल से रह रहा था और बिना किसी अंतर के, तो उन्होंने उसकी चेतावनी को मजाक के तौर पर लिया। यह व्यक्ति लूत यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा के बाहर था और परमेश्वर के लिए इसकी कोई भी गवाही नहीं थी। उसने इस नगर में परमेश्वर के लिए एक भी व्यक्ति को नहीं जीता, अर्थात प्रभु की संगति में नहीं लाया। मित्रों, यही नियम आज भी लागू होता है। जब आप दूसरे लोगों की जीविका का तरीका अपना लेते हैं तो आप कैसे प्रभु के लिए आत्मा जीत सकते हैं? मैं सोचता हूं कि वही चीज यहां पर भी व्यवहारिक रीति से हमें दर्शाई गई है, या वही बात यहां पर हमें दिखाई गई है। मैं स्पष्ट रूप से इब्राहिम के साथ सहमत हूं कि लूत उद्धार पाया हुआ नहीं था, परंतु यहां पर ध्यान दीजिए कि पत्रस क्या कहते हैं। दूसरा पत्रस उसके 2:6-8 में हम पढ़ते हैं, और जबकि उसने सदोम और अमोरा के नगरों को विनाशकारी दंड देकर भस्म कर दिया कि वे आने वाले भक्तहीनों के लिए एक उदाहरण ठहरे, जबकि उसने धर्मी लूत को भी छुड़ा लिया जो चरित्रहीन लोगों के वासनायुक्त आचरण से दुखी था, क्योंकि वह धर्मी पुरुष उनके मध्य में रहते हुए जो कुछ देखता और सुनता था उनके कुकर्मों के कारण अपनी सच्ची आत्मा में दिन प्रतिदिन व्यतीत होता था। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां सदोम की तराई में लूत कभी खुश नहीं रह पाया, और अब वह उस नगर सदोम को छोड़ने जा रहा है, और वह अपने साथ किसी भी व्यक्ति को रहने के लिए नहीं ले सकता है सिवाय उसकी पत्नी और 2 कुंवारी बेटियां। इसे पता चलता है कि उसके विचार में मेल खाने वाला कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। उत्पत्ति 19:15-16 में लिखा है, और भोर होते ही दूतों ने लूत से आग्रह करते हुए कहा, उठ, अपनी पत्नी और 2 पुत्रियों को जो यहां हैं ले जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाए। परंतु उसने संकोच किया। तब वे पुरुष उसका और उसकी पत्नी और पुत्रियों के हाथ पकड़कर उन्हें नगर के बाहर ले आए, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। मित्रों, यहां पर एक व्यक्ति है जो सब कुछ होते हुए भी वह परमेश्वर का जन नहीं है। यदि मेरे पास सिर्फ उत्पत्ति की पुस्तक होती तो मैं नहीं जानता कि मैं लूत पर विश्वास करता कि नहीं, कि वह उद्धार पाया है। परंतु पत्रस उसे धर्मी व्यक्ति कहता है, और हम जानते हैं कि वह था। लूत धर्मी इसलिए ठहरा क्योंकि उसने इब्राहिम का अनुसरण किया, वह परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाए। इसलिए परमेश्वर लूत पर अधिक अनुग्रह करते हैं, और अब वह परमेश्वर पर विश्वास करता है और नगर से बाहर निकल जाता है। हम इसके आगे उत्पत्ति 19:17-19 में पढ़ते हैं, और ऐसा हुआ कि जब वे उन्हें बाहर निकाल ले आए तो उसने कहा, अपने प्राण बचाकर भागो, पीछे मुड़कर ना देखना, ना घाटी में कहीं रुकना, उन पहाड़ों पर भाग जाओ कि कहीं तुम भी नाश ना हो जाओ। परंतु लूत ने उनसे कहा, नहीं मेरे स्वामियों, नहीं, देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने अपनी दया दृष्टि मेरे प्राण बचाकर मुझ पर प्रकट की है, परंतु मैं पहाड़ों पर नहीं भाग सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। मित्रों, लूत भी शहर को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वह नगर से बाहर निकला, परंतु वह पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। उत्पत्ति 19:20 में लिखा है, देख यह नगरी शरण लेने के लिए पास ही में है, वह छोटी भी है, कृपा कर मुझे वहां भाग जाने दे, क्या वह छोटी नहीं और मेरा प्राण बच जाएगा। मित्रों, यह छोटा नगर जोवर था जहां बचने के लिए लूत गया। आप यहां पर ध्यान दीजिए कि यह व्यक्ति सदोम से निकल कर आया, लेकिन वहां से वो साफ नहीं निकला, और हम पाते हैं कि वो उस विशेष समय पर वह एक बड़ी समस्या में पड़ा। हम आगे देखते हैं कि समतल में बसे नगर नाश किए जाते हैं। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा नगर को नाश कर दिया, और हमें 2 बातें कही गई है, एक उसकी पत्नी के बारे में और दूसरी उसके पुत्रियों के बारे में। उसकी पत्नी के बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 19:26 में, परंतु लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी मुड़कर पीछे देखा और वह नमक का खंभा बन गई। मैं सोचता हूं कि इस पद को बहुत गलत रीति से समझा जाता है, क्योंकि श्रीमती लूत ने संसार की ओर पीछे मुड़कर देखा, और मैं ये भी सोचता हूं कि इसके दोहरे कारण हैं। पहला कारण यह था कि वह सदोम को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा। वह सदोम नगर से प्रेम करती थी, वह लूत से भी प्रेम करते थे, परंतु यह सदोम का लूत था जिससे वह प्रेम करती थी, इसलिए वह सदोम को छोड़ना नहीं चाहती थी। शायद हो सकता है कि वह शहरी मनोरंजनालय की सदस्य थी, सिलाई संघ की सदस्य और शेक्सपियर संघ की भी सदस्य थी। वास्तव में ऐसा कोई संघ शहर में नहीं था जिसकी वह सदस्य नहीं थी। वह दोपहर के इस छोटे सम्मेलन को बहुत पसंद करती थी और मुझे पूरी रीति से नहीं मालूम, लेकिन एक धार्मिक संघ में वो धार्मिक अध्ययन करते हैं और विचार भी करते थे। वह उस भरी भीड़ में थी, इसलिए वह सदोम नगर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसका दिल सदोम से लगा हुआ था। उसका शरीर चलकर बाहर निकल गया, परंतु निश्चय ही उसने अपना दिल या हृदय वहीं छोड़ दिया। मित्रों, यह एक अद्भुत सीख हम सबों के लिए है। और मैं सुनता हूं कि बहुत से मसीही लोग बातचीत करते हैं कि हम मसीह को आते हुए देखना चाहते हैं, परंतु वे उस प्रकार का जीवन नहीं जीते हैं जैसा कि वे कहते हैं। यदि वे सही में देखना चाहते तो अवश्य ही उसके अनुसार जीवन भी व्यतीत करते। रविवार की सुबह उनके लिए अपने प्रिय घर को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, और रविवार रात्रि में भी वे अपने प्रिय घर को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वे टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं। उनके घर में रंगीन टेलीविज़न है और वे रविवार की रात कार्यक्रम देखने जा रहे हैं क्योंकि कुछ अच्छे कार्यक्रम आने वाले हैं। परंतु मेरे प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आपको टेलीविज़न छोड़ना पड़ेगा, अपने प्रिय घर को छोड़ना पड़ेगा और आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मेरे पास एक प्रश्न है आपसे पूछने के लिए। क्या आपका हृदय इन सब वस्तुओं को पृथ्वी पर छोड़ जाने से दुखित होगा? मैंने इस प्रश्न को कई बार अपने आप से भी पूछा है। मैं आपसे सच कहूं, मुझे छोड़ने की चिंता नहीं होती है। मैं यहां रहना पसंद करूंगा। मेरे मित्रगण और परिवार के अन्य सदस्य हैं जिनके साथ मैं भी रहना चाहूंगा, और मैं रेडियो सेवकाई में काम करता हूं तो उसे और आगे करना चाहूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे थोड़े समय के लिए अवश्य रहने देंगे, लेकिन मैं इतना कहने के योग्य हूं कि जब मसीह का बुलावा आता है तो मेरे पास पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जिसे छोड़ने पर मेरे हृदय को दुखी करेगी, कोई भी वस्तु नहीं। मैं भी अपने घर से प्रेम करता हूं, परंतु जैसे ही मैं यहां से जाता हूं उसे छोड़ दूंगा। आप उस दिन के बारे में क्या सोचते हैं? श्रीमती लूथ ने पीछे मुड़कर देखा और यह एक स्पष्टीकरण है। और दूसरा कारण उसके पीछे मुड़ने का यह है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि नगर से बाहर चले जाओ और फिर से मुड़कर इसे ना देखना। लूथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। परंतु श्रीमती लूथ ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, वह विश्वासी नहीं थी, इसलिए वह नगर से बाहर नहीं जा पाई। वह नमक का खंभा बन गई क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा। आगे हम देखते हैं कि लूथ अपनी बेटियों के साथ सोअर में जा बसा, जहां उसने अपनी दोनों बेटियों के साथ घिनौना पाप किया। मित्रों, मैं यहां पर लूथ के दोनों बेटियों की कहानी की ओर नहीं जाना चाहता हूं जो 31 से 38 पद में है। कोई बात जितनी अधिक घिनौनी हो सकती है वो यही है। सच बात कहूं कि लूथ ने सदोम जाकर अच्छा नहीं किया। उसने अपना सब कुछ खो दिया सिवाय अपनी आत्मा के। उसका जीवन बहुत लोगों के लिए एक तस्वीर है जो अपने जीवन के पापों का न्याय नहीं करेंगे। वे लोग बच जाएं, परंतु जलते जलते। परमेश्वर ने इसे बहुत ही निश्चित रूप में उनसे कहा है जिन्होंने अपना सब कुछ टोकरी में इस रीति से डाल दिया है कि यदि वे यहां अपने जीवन का न्याय नहीं करते हैं तो परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। स्पष्ट रूप से लूथ की कहानी भी यही थी। मित्रों, मैं इस अध्याय को इब्राहिम की ओर देखने के द्वारा समाप्त करना चाहता हूं कि इब्राहिम इन सब के बारे में क्या सोचते हैं। हम उत्पत्ति 19 अध्याय उसके 27 और 28 पद में पढ़ते हैं, बड़े सवेरे इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख पहले खड़ा था, और उसने सदोम और अमोरा और घाटी के सारे देश की ओर दृष्टि डाली तो क्या देखा कि उस देश में से धधकते हुए भट्ठे का सा धुआं उठ रहा है। मित्रों, जब इब्राहिम ने सदोम की ओर देखा तो मैं समझता हूं कि उसका हृदय दुखी हुआ। मुझे निश्चित नहीं है कि इब्राहिम को इस बात का पता था कि नहीं कि उसका भतीजा वहां से निकल गया है। हो सकता है कि उसे बाद में इसका पता चला। जब उसने सदोम की ओर देखा तो संभवतः वह लूत के लिए दुखी हो रहा था क्योंकि उसने उस नगर में अपना कुछ भी पैसा नहीं लगाया था जैसे कि लूत ने लगाया था, और जब उस नगर का न्याय आया तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसने उस नगर के लिए कुछ खर्च नहीं किया था और न ही वह उस नगर से प्रेम करता था और न संसार की वस्तुओं से। मित्रों, इस बात को याद रखें कि हमें पहला यूहन्ना उसका 2:15 में क्या कहा गया है, संसार से प्रेम न करो और न उन वस्तुओं से जो संसार में हैं। मेरे एक मित्र ने बताया कि उसने एक संदेश तैयार किया है और उसकी शीर्षक उसने सदोम में सैर सपाटा रखा है, लेकिन जब मैं सदोम नगर को लूत की आंखों से देखता हूं तो मैं यह देखता हूं कि लूत का दृष्टिकोण या विचार निश्चय ही गलत था और उसकी पत्नी श्रीमती लूत जो उस नगर के साथ प्रेम कर बैठी थी। और अब आप इब्राहिम के साथ भी सदोम में सैर सपाटा कर सकते हैं, उसने वहां पर कुछ भी हानि नहीं उठाई। अंत में आप परमेश्वर के साथ उस नगर में जा सकते हैं और वह जैसे देखता है उसी दृष्टि से आप भी देख सकते हैं। आज यह बहुत दुख की बात है कि कलीसिया पुरुषगामी के पाप को उस रीति से नहीं देख रही है जैसे परमेश्वर देखते हैं। मैं नहीं सोचता कि आज पुरुषगामी इतना अधिक प्रचलित है जितना कि पहले था, परंतु हमारी आबादी में एक बड़ी संख्या है जो काम विकृति में शामिल है। हम इसके विषय में इतनी सरलता से बातें करते हैं, इससे पहले हमने कभी भी नहीं की, और आज यह एक ऐसा विषय है जिसे हमारे मध्य में सही माना जाता है। आज मसीहों का स्वभाव पुरुषगामियों के प्रति कैसा होना चाहिए, यहां तक कि लूत ने भी अपने समय में कहा तुम लोग दुष्टता कर रहे हो और परमेश्वर ने इसका न्याय भी किया, क्या इतना जाना काफी नहीं है कि परमेश्वर के संतान या विश्वासी इस प्रकार के कार्यों से या बातों से भी समझौता नहीं कर सकते हैं। यह एक पाप है मित्रों, संसार इससे प्रसन्न होता है और तब वह इसे बीमारी कहता है। शराबियों के बारे में भी यही बात कही जाती है कि निश्चय ही वह बीमार है। यह सच बात है कि वह बीमार है, लेकिन क्या बात थी जिसने उसे पहली बार शराब पीने के लिए मजबूर किया और बाद में बार बार जब तक कि वह बीमार ना हो गया। मेरे मित्रों, यह पाप है जिसने ऐसा किया है। पाप एक समस्या है और पुरुषगामी पाप है, और रोमियों की पत्री उसके 1:18-32 में परमेश्वर कहते हैं कि उसने उनकी ही दशा में छोड़ दिया। मित्रों, उत्पत्ति 19 एक महत्वपूर्ण अध्याय है हम नई पीढ़ियों के लिए जो आज इस बदलती दुनिया में जी रहे हैं, कि हम इन सबसे बच सकें। मित्रों, यहां पर 19 समाप्त हुआ और अब हम अपने अध्ययन को उत्पत्ति 20 से जारी रखेंगे। अध्याय 20 इतना आवश्यक लगता है जैसे एक गाय के 5 होना। इसका मतलब है इस अध्याय में इब्राहिम पुनः वही पाप को दोहराता है जिसे उसने मिस्र में किया था, इसलिए आपको इस अध्याय को छोड़ने का मन करेगा। वह अपनी पत्नी सारा को बहन कहकर संबोधित करता है, यह वही कहानी है, लेकिन इस अध्याय को इस पुस्तक में एक विशेष उद्देश्य के अंतर्गत रखा गया है। इससे पहले कि इब्राहिम और सारा से इसहाक उत्पन्न हो, वे इस पाप का सामना करने जा रहे हैं, और इससे पहले कि वे आशीष को प्राप्त करें, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आशीष प्राप्त करने से पहले अपने जीवन के पापों पर विचार करें, तभी आशीष है अन्यथा नहीं। मित्रों, इस अध्याय में हम सिर्फ मुख्य मुख्य पद पर विचार करेंगे या विषयों को देखेंगे। आइए हम उत्पत्ति 20 उसके 1-2 को पढ़ें। इब्राहिम वहां से नेगेव देश को गया और कादेश तथा शूर के बीच जा बसा। वह प्रवासी के रूप में गरार में रहने लगा और इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा वह मेरी बहन है। अतः गरार के राजा अबीमेलेक ने सारा को बुलवाकर अपने पास रख लिया। मित्रों, यह एक रुचिदायक बात है कि 90 की आयु में भी सारा सुंदर थी। बहुत कम लोग इस उम्र में सुंदर दिखते हैं। अब इब्राहिम को देखिए कि वह उस देश के दक्षिण क्षेत्र में कादेश बरेना से भी आगे बढ़ गया, जहां बाद में इसराइली मिस्र से निकलकर आए, परंतु उस देश में प्रवेश करने से मना कर दिया। इब्राहिम गरार में जा बसा और मैं समझता हूं कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए था, फिर भी उसने वहां पर सारा के बारे में झूठ कहा। तब इब्राहिम अपनी गलती को महसूस करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इब्राहिम के इस स्वीकृति को अवश्य देखें, क्योंकि यही विशेष कारण है कि जब तक ये दोनों इसे स्वीकार न कर लें, उन्हें इसहाक के रूप में आशीष प्राप्त नहीं होगी। आगे हम उत्पत्ति 20 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं। इब्राहिम ने उत्तर दिया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने यह सोचा कि निश्चय इस स्थान में किसी को भी परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए मेरी पत्नी के कारण ये लोग मुझे मार डालेंगे। मित्रों, इब्राहिम अबीमेलेक से बात कर रहे हैं और अबीमेलेक परेशान है कि इब्राहिम इस प्रकार झूठ बोल सकता है। इब्राहिम ने यहाँ पर भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि जहाँ पर वह जा रहा है वहाँ परमेश्वर है ही नहीं, परंतु वहाँ अबीमेलेक है जो भले और बुरे को अच्छी तरह से जानता है। वह परमेश्वर को जानता था। यहाँ पर अबीमेलेक की दृष्टि में इब्राहिम कमजोर पाया जाता है। और हम आगे उत्पत्ति 20 के 12 पद में पढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त वह सचमुच मेरी बहन ही है, वह मेरे पिता की बेटी तो है पर मेरी माता की बेटी नहीं, और वह मेरी पत्नी हो गई। यहाँ पर इब्राहिम सत्य बोलने के लिए आधा झूठ कहते हैं कि सारा मेरी आधी बहन है और वह मेरी पत्नी है। और इस प्रकार से हम आगे उत्पत्ति 20 के 13 पद में पढ़ते हैं, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, तू मुझ पर इतनी कृपा करना कि जहां कहीं भी हम जाएं, तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। मित्रों, इब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास नहीं किया, इसलिए दोनों ने यह योजना बनाई। लेकिन इस पाप का विचार परमेश्वर के सामने होना अवश्य था ताकि इब्राहिम की प्रार्थना सुनी जाए और उसे इसहाक को पुत्र के रूप में आशीष दे। जब तक उनके पापों का विचार ना हो, इसहाक का जन्म नहीं होगा। तो मित्रों, आज बहुत से मसीही इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं और आशीष से वंचित हैं। कृपया पहला क्रंथियों उसका 11 अध्याय उसके 28 से 32 पद को आप अवश्य पढ़ें। आज हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप प्रभु में बने रहें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।